करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन सेंटर ऑफ साउथ फ्लोरिडा मायामी में आज से हमें यहाँ पुनः सत्वार सूत्र के संबंध में बात शुरू करनी है। हम क्या करें, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि पिछली बात आप याद ही नहीं रख पा रहे हैं। यदि आप पिछली बात को याद रखें पीछे से भाई बोलते हैं ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, हम क्या करें। लेकिन भाई ये कर्म के उदय को कब तक देखते रहोगे? कभी हमें ज्ञानावरणी कर्म का उदय दिखता है, कभी हमें दर्शनावरणी कर्म का उदय दिखता है, कभी हम अंतराय कर्म को बाधक कारण जानते हैं, कभी मोहनी कर्म को बाधक कारण समझते हैं। आखिर इन कर्मों की अधीनता कब तक स्वीकार करते रहोगे? इन कर्मों से निकल के बाहर तो आओ। ज्ञान नहीं हुआ तो हमने कह दिया ज्ञानावरणी का उदय है। समझिए, यदि थोड़ा बहुत भी समझ कम हुई, उपयोग से निकल गई बात, याद नहीं रही, हमने फटाफट कह दिया ज्ञानावरणी कर्म का उदय। हम क्या करें, ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। लेकिन हम ये कहते हैं कि यदि ज्ञानावरणी कर्म का उदय ज्ञान नहीं होने देवे तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय तो सदा से है और हमेशा रहेगा। आप मुक्त कैसे होंगे, कैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी? कभी हम दर्शनावरणी कर्म का बहाना बनाते, इतनी दूर से आए हैं खड़ी क्या करें, ये दर्शनावरणी कर्म का उदय है इसलिए नींद आ जाती है। दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद है ना, उनमें 9 भेदों में जो 5 प्रकार की निद्रा है, 5 प्रकार की नींद है, वो दर्शनावरणी कर्म के उदय से आती है। आप जानते हैं 5 प्रकार की नींद? नहीं जानते? हाँ, और एक और है लास्ट में, उसका नाम है स्यान वृद्धि। स्यान वृद्धि आप जानते हैं ये प्रचला क्या होती है? 5 प्रकार की नींद है, माने जब हमें नींद आती है तो हम बहाना बनाते हैं कि हमारे दर्शनावरणी कर्म का उदय है। पंडित जी क्या करें, और दर्शनावरणी कर्म के उदय का बहाना बनाते हैं और आराम से प्रवचन सभा में आकर के सोते हैं। क्या करें, हमारे हाथ में तो नहीं है। लेकिन भाई ये 5 प्रकार की निद्रा कौन सी है सुन लो, चर्चा चल रही है तो 2 मिनट बात करके फिर आगे बढ़ूंगा। एक का नाम है प्रचला, दूसरे का नाम है निद्रा, तीसरे का नाम है प्रचला प्रचला, चौथी का नाम है निद्रा निद्रा, और 5वीं का नाम है स्यान वृद्धि। स्यान वृद्धि आधा स आधा त यान वृद्धि, स्यान वृद्धि। मोहित भाई सुने आपने, याद है 5? इनका स्वरूप ख्याल में है कुछ? सबसे पहले नंबर की निद्रा है जिसे हमने प्रचला कहा है। हमने नहीं, जिस सत्वार सूत्र महाशास्त्र को हम यहाँ शुरू करने वाले हैं, इस सत्वार सूत्र महाशास्त्र के 8वें अध्याय में 8 चैप्टर, उसने ये 5 प्रकार की निद्रा बतलाई है। प्रचला किसे कहते हैं, प्रचला क्या होता है, सूत्र नंबर बताऊं क्या प्रचला के लिए? देख लेना, ये जो प्रचला है, ये प्रचला कौन से प्रकार की निद्रा है, प्रचला निद्रा को हम क्या कहेंगे? तो मैं आपको बहुत मोटे मोटे शब्दों में ये कह सकता हूँ, जिससे आपको समझ में आए। मैं ये बतला सकता हूँ कि भाई ये जो प्रचला नाम की निद्रा है, ये निद्रा उन लोगों के होती है जो लोग प्रवचन सभाओं में बैठते हैं। हाँ, ये निद्रा वाले लोग ज्यादातर ये प्रचला निद्रा वाले लोग ये यहाँ प्रवचन सभाओं में पाए जाते हैं। मैं गलत नहीं कहता, सच कहता हूँ। आठवें अध्याय का सूत्र नंबर है 7, 7 नंबर का सूत्र है 1.75 का। खैर, इतनी हल्की निद्रा होती है ये प्रचला कि जिस निद्रा में व्यक्ति को लगे ही नहीं कि मैं सो रहा हूँ। ऊंग जिसको कहते हैं ना गुजराती में, क्या कहते हैं? ऊंग ही कहते हैं ना गुजराती में। झपकी लेता है, ऊंगता है, बैठे बैठे झोंका झोंका आ जाता है बैठे बैठे। और कोई बगल वाला व्यक्ति कहे कि तुम सो रहे हो, नहीं सब सुना, मैं तो जग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसे जो लोग हैं वे प्रचला निद्रा वाले लोग हैं, उनको प्रचला नाम की नींद है। ऐसे बहुत लोग दिखते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि आपकी गर्दन थोड़ी सी लटकी और हमने पूछा सो रहे हो, बोले नहीं। मैंने कहा बताओ क्या चल रहा था, तो बता दीजिए। माने उस नींद में कुछ वो लिंक नहीं टूटे, ऐसी निद्रा है प्रचला, बहुत हल्की है। सेकंड नंबर का नाम है निद्रा। एक नॉर्मल व्यक्ति की जो नींद होती है वो होती है निद्रा। फिर तीन नंबर पर है प्रचला। प्रचला ये ऐसी नींद है जिस नींद में व्यक्ति रात में सोते सोते बड़बड़ाने लगता है, कुछ बोलने लगता है, नींदों में उसके शब्द निकलते हैं कुछ भी। और जब उसका वो बेटर हाफ कुछ पूछता है कि क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसी निद्रा कौन सी है? प्रचला। प्रचला डबल प्रचला है। यहाँ नींद में शब्द निकलने लगना, नींदों में ही हाथ पांव पचाटने लगना, कभी कभी मुंह से लार बहने लगना, ये सब प्रचला प्रचला का काम है। तीसरे प्रकार की। चौथे प्रकार की है निद्रा। निद्रा तो निद्रा निद्रा का मतलब यह है कि नींद पर नींद। ये निद्रा निद्रा ऐसी निद्रा है जो इंडिया से यहाँ आने पर जेट लैग के टाइम होती है, उठाने से भी नहीं उठता। अरे बगल में घड़ी में अलार्म लगा रहे ना, तो अलार्म सुनाई नहीं देता। और यदि अलार्म को ऐसा हाथ लगा करके सोए कि 5 मिनट में उठता हूँ, तो मानो 50 मिनट निकल जाए, 1-2 घंटा निकल जाए, पता ही नहीं लगता। ऐसी निद्रा कौन सी है? नंबर 4, प्रचला। प्रचला निद्रा, इसको कभी कभी कुंभकर्णी नींद भी कहते हैं, कुंभकर्ण जैसी निद्रा। निद्रा को निद्रा निद्रा चौथे नंबर वाली को, ये कुंभकर्ण जैसी निद्रा है। कुंभकर्ण ऐसे सोते नहीं थे, वे तो ज्ञानी धर्मात्मा थे, लेकिन प्रसिद्ध है ऐसा जगत में। पांचवी है स्यान वृद्धि। वो नींद कौन सी है? वो तो चलते चलते भी सोता है, नींदों में चलने की आदत होती है, सोते सोते उठ करके चलने लगे और रात को कहीं घूम फिर करके वापस लौट करके आ जाए और किसी ने पूछा कि कहाँ गए थे रात को, बोले कहीं नहीं गए, मैं तो जल्दी सो गया था। ये पांचवे नंबर वाली, इसको तो बीमारी कहते हैं, पांचवे नंबर वाली निद्रा को। चलिए, मुझे वो सारी चर्चाएं नहीं करनी थी, मुझे तो सिर्फ इतना आप लोगों को बतलाना है कि कभी हम प्रवचन में नींद आती हो और बाद में कोई व्यक्ति टोके आपसे कि आप प्रवचन में सोते क्यों, सोने आते हो क्या यहाँ पर इतनी दूर से, तो आप ये कहते हैं क्या करें पंडित जी, दर्शनावली का उदय। हमने जब आपसे कहा कि तत्वार सूत्र आपको पिछली कुछ बातें याद होंगी और नहीं है तो इसलिए मुझे वापस रिपीट करना पड़ता है, तो आपने कहा पंडित जी ज्ञानावली का उदय। कभी आप सभा में नहीं आते हैं, हम पूछे आपसे कि भैया कल क्यों नहीं आए थे, कि क्या करें पंडित जी अंतराय का उदय। कभी कुछ प्रतिकूल परिस्थिति हो तो कहता है असाता का उदय। माने इसके पास में ये जैन सिद्धांत और कर्म सिद्धांत पढ़ करके भी इसने बहाने ही बनाना सीखा है। भाई ये बहाने मत बनाओ, अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी को देखो। पुरुषार्थ की कमजोरी है इसलिए ये हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो पाता है। हमें यदि मोक्ष मार्ग प्रकट करना है तो पुरुषार्थ ही होना पड़ेगा। पुरुषार्थ की कमजोरी की बात मत करो। सत्वार सूत्र महाशास्त्र ये ऐसा शास्त्र है जो जैन परंपरा में सर्वोपरि स्थान रखता है। उपलब्ध शास्त्रों में सर्वमान्य है, एक स्वर से सब इसे मानते हैं और इस पर श्रद्धा रखते हैं। इस सत्वार सूत्र महाशास्त्र में सारे जिनागम का सार भरा है। पूरे द्वादशांग की चर्चा इस सत्वार सूत्र में आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है जो तत्वार सूत्र के बाहर हो। यू नेम इट एंड हैव इट, एवरीथिंग आपको इसमें मिलेगा। कोई भी जिनागम का टॉपिक हो, आज के समय में ध्यान ध्यान के प्रकरण चर्चाएं बहुत चलती है। जहां देखो वहां ध्यान ध्यान के शिविर लगते रहते हैं। आपको इसमें ध्यान भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा, लेकिन ध्यान से ज्ञान करोगे तो सब मिलेगा। क्या कहा? ध्यान से ज्ञान करोगे ना तो सब मिलेगा, और ध्यान नहीं रखा और ज्ञान करने की कोशिश की तो कुछ नहीं मिलेगा। भूगोल भी है, स्वर्ग नरक भी है, सात तत्व भी है, द्रव्य भी है, पदार्थों की चर्चा भी है, कर्म सिद्धांत भी है, गुणस्थानों की चर्चा भी है, यहाँ तक कि व्रत उपवास त्याग संयम सारी चर्चाएं जो आप नाम लो, पांच प्रकार के ज्ञान की चर्चा भी है, पांच प्रकार के भाव की चर्चा भी है, पांच प्रकार के शरीरों की चर्चा भी है। जो आपको ऐसा लगता हो कि भाई इसके बारे में तत्वार सूत्र में कुछ है या नहीं, तो हम आपको बतलाएंगे कि ये प्रकरण भी आपको तत्वार सूत्र में मिलेगा। इस तत्वार सूत्र के मंगलाचरण की यदि हम बात वापस शुरू करें, क्योंकि आप लोग भूल चुके हैं, है ना, इसलिए तो मैं ये कह सकता हूँ ऐसा मंगलाचरण भी शास्त्रों में दूसरा नहीं मिलता। ऐसा मंगलाचरण आपको शास्त्रों में मंगलाचरण मिलेंगे जिसमें सिद्ध भगवान को नमस्कार किया हो, जिसमें महावीर भगवान को नमस्कार किया गया होगा, है ना, और जिसमें अहिंसा धर्म को नमस्कार किया गया होगा, जैसे दसवें कालिक के मंगलाचरण में कहा ऐसा अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्ति जस्व धम्मे सयामणो, ऐसी चर्चा की ना वहाँ, उस धर्म को नमस्कार किया। तो कहीं धर्म को नमस्कार किया है, कहीं देव को नमस्कार किया है, कहीं परमात्मा को नमस्कार किया है, मैंने सब जगह पर कहीं न कहीं नमस्कार किया है। तो फिर साहब उमा स्वामी आचार्य ने इसमें नमस्कार नहीं किया क्या? कि नमस्कार तो किया है, लेकिन नमस्कार करने के साथ में वंदे सद्गुण लब्धे ऐसी चर्चा कह दी है जो जिनागम की यूनिक विशेषता है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, हे भगवान आपके पास में आया हूँ, धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, कोई वैभव परिग्रह नहीं चाहिए, मेरे को तबीयत ठीक हो जाए ऐसा भी नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार की कोई अनुकूलता नहीं चाहिए, लोक में तबीयत ठीक हो जाए, कोई परिवार वाले स्वस्थ हो जाए, पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए, न बाल बच्चे चाहिए न परिवार चाहिए, तो क्या चाहिए तुझे, क्यों आया है मेरे पास में? क्यों आया हूँ बता दूं, मुझे ऐसा मांगने वाला भी दूसरा नहीं आया होगा। हे भगवान आपके सामने मेरा जैसा भक्त भी दूसरा नहीं आया होगा, क्योंकि आपके पास में जितने भक्त आते हैं उन्होंने आज तक आपसे क्या मांगा होगा? सांसारिक सुख, थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन आज एक ऐसा भक्त आपके सामने आया है जो भक्त ये कहता है कि हे भगवान मुझे ये सब क्या, मुझे कोई लॉलीपॉप दे करके पटाते हो, मेरे को नहीं चाहिए मुझे ये सब, तो क्या चाहिए बता, कि मुझे तो आप जैसा साम्राज्य चाहिए। है कोई ऐसा मांगने वाला? ये जो राजा लोग हैं ना, आपने इतिहास में सुनी होगी ऐसी बातें, बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट लोग, ये लोग अपने कोई बड़ा आयोजन, बड़ा कुछ कोई ऐसा कुछ उनके बड़ा फंक्शन हो तो उसके बाद में वो किमित्तिक दान देते हैं। चक्रवर्ती जैसे सम्राट, युधिष्ठिर जैसे, ऐसे जो बड़े बड़े राजा थे, कोई उन्होंने आयोजन किया 5 दिन का, कोई उत्सव मनाया और उत्सव के बाद में उन्होंने पूरे नगर में घोषणा कर दी, जिसको जो मांगना हो तो आकर के मांग लो। पता है क्यों ऐसी घोषणा करते हैं? कि वो जानते हैं इन भिखारियों की हैसियत कितनी है, क्या मांगेंगे मेरे से? 2 फलांग जमीन मांग लेगा, 2-4 सोने की मोहरे मांग लेगा, रत्न मांग लेगा, कच्चा मकान हो तो पक्का मांग लेगा, क्या मांगेगा ये? ये साइकिल है तो गाड़ी मांग लेगा, और क्या है भिखारियों की कीमत? वो इस बात को बहुत अच्छी, उनको कोई डर नहीं होता महेंद्र भाई, उन राजाओं को, कि कोई व्यक्ति आकर के ऐसा मांग लेगा कि महाराज आप उतरो आपका राज्य दे दो, कोई मिलेगा ऐसा? वो जानते हैं। इसी तरह से भगवान की शरण में आने वाले जितने भक्त हैं, ये सब भक्त भगवान से क्या मांगते हैं? ये लौकिक बातें मांगते हैं, लेकिन आज ये उमा स्वामी आचार्य जैसे भक्त सामने आए हैं और ये भक्त क्या कहते हैं? हे जिनेन्द्र देव, मुझे तो दुनिया में कुछ पसंद नहीं है। तो आया है मेरे पास में, ये कोई पसंद नहीं है कि नहीं है मुझे कुछ भी पसंद? मुझे तो आपके 3 गुण पसंद आ गए, 3 गुण पसंद आ गए हैं। कौन से? हमने दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, इसीलिए तो अच्छा है ना, भूल गए आप लोग। मैंने महेंद्र भाई से कही थी कि 2 अध्याय चल गए या 1 चल गए, अब आगे चलाना है, तो महेंद्र भाई ने कहा सब भूल गए। इन्होंने कही थी, मुझे भरोसा नहीं हुआ। फिर जब मैंने अभी आपसे पूछा कि कौन से 3 गुण चाहिए, आपने बताया, तो मुझे महेंद्र भाई की बात पे पक्का भरोसा हो गया। तो दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये। ये 3 गुण चाहिए, दर्शन ज्ञान चरित्र चाहिए आपको। सुनो, ये उमा स्वामी आचार्य बताने वाले हैं, जो तू मांग रहा है वो तेरे पास में है। दर्शन ज्ञान चरित्र चाहिए भगवान के पास में जाकर के, ये नहीं है क्या हमारे पास में? दर्शन ज्ञान चरित्र तो है, लेकिन वर्तमान प्रकट पर्याय में उस ज्ञान की पूर्णता नहीं है, वितरागता नहीं है, चारित्र की पूर्णता नहीं है, हितोपदेशीपना नहीं है। क्या वर्ड पढ़े हमने? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता, क्या शब्द थे? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? मोक्ष मार्ग के नेता क्या?
भगवान।
नेता किसे कहते? सुनो, आप ऐसा मत समझना कि मैं सारी बातें पिछली बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ क्या क्या बातें बताई थी, तो इसलिए बहुत सारी बातें नई भी आएंगी, इसलिए कोई ऐसा समझ लेंगे कि मैं तो घर जाकर के पिछली रिकॉर्डिंग सुन लूंगा पिछले साल की, तो आपको मिलेगी नहीं बातें। मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता है, नेता कौन होते हैं? आप लोगों के यहाँ भी कोई ग्रुप में नेता है क्या? नेता है क्या कोई आपके यहाँ? नहीं कोई भी नेता? नेता होते हैं ज्यादा बोलने वाले, उनको नेता कहते हैं। जो बात बात में ज्यादा बोलते हो, जो जिनको जिनको माइक लेकर के खड़े रहने की ज्यादा आदत हो, कई लोग तो उनके बारे में कहने लग जाते हैं कि यार ये बहुत नेता बनता है, ये बहुत नेतागिरी दिखाता है। जो बोलते हो वो नेता हैं, जो उपदेश दाता हो वो नेता हैं। ये सुनो, हमारे भगवान शंकर परमात्मा ये मोक्ष मार्ग के नेता हैं, माने जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग बताने वाले। मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता हैं जगत के जीव, मतलब हितोपदेशी है, हितकारी उपदेश देते हैं। बड़ी मार्मिक बात है कि हितोपदेश भी साधारण चीज नहीं है, हितोपदेश भी बड़ी गजब की चीज है। हम हितोपदेश को ही नहीं समझते। आओ आओ हरीश भाई, मैं आपको ऐसी बात बतलाऊंगा जिसमें आपका भला होगा। तो ऐसा लगने लगता है जैसे कोई लॉटरी का नंबर बताइए, उसने हमें भला देने लगता है। हमने ऐसा कहा कि चलो भाई आपको कोई हम अच्छी बात बतलाते हैं, आपके भले की बात कहते हैं, तो इसको लगता है कि मेरे घुटनों के दर्द का कोई इलाज बताइए, इसको लगता है मेरे हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसको जगत की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिखता है। लेकिन हम कह रहे हैं ये नहीं, हम ऐसी हितकारी बात बतलाएंगे कि जिस बात को सुनने के बाद में आपके सारे अहित दूर हो जाएंगे। आप तैयार हैं ऐसी बात, उसका नाम है हितोपदेश। कुछ समझते नहीं है। सारे जगत में जितने त्यागी तपस्वी बाबा घूमते हैं, ये सारे के सारे बाबा ये आपको इस आधार पर भटकाना चाहते हैं कि आप इस मंत्र का जाप करो, आपका भला हो जाएगा। मुकुंद भाई, जितने ये पूजा में जितने लोग ज्यादा इकट्ठे दिखाई देते हैं ना दुनिया में, उन सब के पीछे कारण ये है, उनको लगता है ये कोई मंत्र ऐसा पढ़ देंगे पंडित जी जिस मंत्र से मेरा भला हो जाएगा, इस मंत्र से मेरा उद्धार हो जाएगा। वो उनको हितोपदेश लगता है, उनको लगता है कि इनका आशीर्वाद मिल गया, इनकी टीसी लग गई अपने माथे पर तो अपना भला हो गया। अरे ये हितकारी उपदेश नहीं है, क्योंकि जगत में हित होता ही नहीं है, ये मोक्ष मार्ग का उपदेश ही हितोपदेश है। मोक्ष मार्ग के उपदेश को हितोपदेश कहते हैं। ये मोक्ष मार्ग नहीं पहचानता है, इसलिए हितोपदेश ही नहीं है। हमारे भगवान हितोपदेशी है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता है। और देतारम कर्म भूभ्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, देतारम भेदने वाले हैं, कर्म भूभ्रताम, भूभ्रत माने पर्वत, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, भेदतारम कर्म भूभ्रताम। इसका मतलब क्या हुआ? वीतरागी है, हमारे भगवान वीतरागी हैं। और ध्यान रखना, वीतरागियों की पूजा वीतरागता से की जाती है। रागियों की पूजा में राग होता है और वीतरागियों की पूजा में वीतरागता होती है। वीतरागियों की पूजा वीतराग भाव से होती है। आप राग से पूजा मत करना संडे को, मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे पंडित जी ये जो पूजा अपन ले रहे हैं ना, इसको अच्छा राग से गाओ, राग से करो पूजा। यहाँ क्या सिखा रहे हैं आपको? वीतराग से करो। वीतराग कैसे, वीतराग से कैसे गाएंगे? अरे वीतराग का गाने का नाम नहीं है, वीतराग का समझने का नाम है। यहाँ गले से उठने वाली राग का निषेध नहीं है, यहाँ चित्त में उठने वाले राग का निषेध है। भक्ति से कुछ मिल जाएगा उस राग का निषेध है। हमारे भगवान वीतरागी हैं। और गजब बात कहूं महेंद्र भाई, भगवान वीतरागी हैं, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना कह दी मैंने, ये तो सब जानते हैं भगवान वीतरागी हैं, स्वाध्याय संघ में सब जानते हैं ना हमारे भगवान वीतरागी हैं। लेकिन सुनो, भगवान वीतरागी हैं हमारे जैन परंपरा में, इसका मतलब ये होता है कि हम सब भी वीतरागी हैं। क्या कह रहा हूं मैं आपको लगेगा यार क्या ऊटपटांग बात कर रहे हो, भगवान वीतरागी हैं, हम तो रागी हैं। आप रागी हो कि वीतरागी हो भाई साहब? आप रागी हो कि वीतरागी हो? रागी हो पक्का? वीतरागी तो नहीं हो? पक्की बात कहते हो? देखो मैं कई तरह से वीतरागता बता सकता हूं। आप खान पान में वीतरागी हो, क्या मतलब ये खाना और ये नहीं खाना ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम तो वितराग भाव से जो मिलता है सब खाते हैं। ऐसे ऐसे वितरागी आप ऐसे वितरागी हैं? आप सब खाते हैं ना?
सब नहीं खाते।
सब नहीं खाते, जितना थाली में आता है वो खाते हैं। कोई बात नहीं, सब तो कैसे खाएंगे? सब आप खा लेंगे तो फिर वो पार्टनर क्या खाएगा? देखो भाई क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप जो वितरागी हैं, ये वितरागता का मतलब क्या है? भगवान की वितरागता को संदेश दे रही है हमारे को। भगवान वितरागी है मतलब इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? भाई इसका मतलब होता है भगवान कुछ करते नहीं, यही होता है भगवान वितरागी है। इसका मतलब आप करता है भगवान वितरागी है मतलब हमारा भला भी नहीं करेंगे और हमारा बुरा भी नहीं करेंगे क्योंकि भगवान वितरागी है। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप दुनिया में किसी का भला बुरा कर सकते हो क्या?
नहीं
कर सकते ना? कर सकते? नहीं कर सकते। भगवान वितरागी हैं इसलिए वो किसी का भला बुरा नहीं करते। और मैं कह रहा हूँ आप लोग दुनिया में किसी का भला बुरा कर नहीं सकते इसलिए आप भी वितरागी हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? उधर उधर हमने वितरागता से अकर्तापन को लिया। भगवान वितरागी हैं इसलिए वे अकर्ता हैं और हम इधर उल्टा लगा रहे हैं कि आप भी अकर्ता हैं इसलिए आप भी वितरागी हैं। तो क्या करना है कि वितरागियों को देख करके वितरागता को पहचानना है, उनको देखो और फिर अपने को देखो इस वितरागता को पहचानना है, ये काम करना है। वितरागी होना नहीं है, अपनी वितरागता को पहचानना है। भगवान बनना नहीं है, भगवत स्वरूप अंदर में बैठा हुआ है और भगवान स्वरूप को पहचानना है। दुनिया में कुछ नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं बढ़ेगा, बढ़ाने से कुछ बढ़ता भी नहीं है। और क्या बढ़ गया अभी तो बोल रहे थे अपन, क्या क्या बोल रहे थे महेंद्र भाई? गुजराती में बोलते हो आप तो, मैं तो हिंदी वाला हूँ। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब क्या की वृद्धि नए पर तोलिए। आप गहराई से विचार तो करो, क्या बढ़ गया? बढ़ गया बढ़ गया, अरे कुछ बढ़ता ही नहीं है आपके पास में। हो सकता है कई लोग ये कहें कि पंडित जी जब हम यहाँ आए थे तब तो कुछ नहीं था और अब देखो कितना बढ़ गया, क्या ज्ञान बढ़ा है, मोह बढ़ा है, राग बढ़ा है, विभाव बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा है। भगवान कैसे मोक्ष मार्ग से नेतारम माने हितोपदेशी, पूछूंगा अब पक्के करा करके जाऊंगा जिससे अगली बार ये नहीं चलाना पड़े। क्या मैं बोर हो गया? आप बोर नहीं होते तो क्या करें? तो नई टेक्निक अपनानी पड़ेगी मुकुंद भाई, बीच बीच में पूछना पड़ेगा। इससे दो लाभ हैं, आपको तो लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा कि नींद डिस्टर्ब होगी, लेकिन आपके नुकसान की मुझे परवाह नहीं है। क्या क्या करना है आपको? जो बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना है, जो सुनेंगे वो पूछूंगा और पूछने के बाद में यदि नहीं आएगा तो वो फिर पनिशमेंट मिलेगा। और पनिशमेंट ये मिलेगा वो भी बता देता हूँ कि आपको घर से याद करके आना पड़ेगा फिर उस चीज को। सबका तैयार है ना? सब लोग चलो। तो पहली बात, हमारे भगवान मोक्ष मार्ग से नेतारम, इसका मतलब भगवान कहते हैं हितोपदेशी है, ठीक है? और हित, हितोपदेशी में दो शब्द है ना, हित और उपदेश। अब हित क्या है इसमें सबका चक्कर है। हमारा आर्यन ये कहता है कि पापा मेरे को फिट बिट दिलाओगे ना, इसमें मेरा हित है। अब सबको अपना अपना हित दिखता है, किसका क्या प्रयोजन है, किसका क्या प्रयोजन है। ये मोहित भाई कहते हैं कि हमारे तो इनको एग्जाम देना है, इसमें कोई पास हो जाए तो ये इसमें हित दिखता है अपने को। किसी को इसमें दिखता है कि प्रमोशन हो जाए तो इसमें हमारा हित है, किसी को ये दिखता है कि हमारे को इनके साथ में डीलिंग हो जाए तो इसमें हमारा हित है। हर व्यक्ति को हित अलग अलग चीजों में दिखता है। किसी को लगता है कि यार ये एक के बाद एक ये प्रोग्राम रखे जा रहे हैं महेंद्र भाई, क्या अब ये थोड़ा सा शॉर्ट कर दे तो हित है। सबको अपना अपना दिन सोचना किसको किस किस में भला दिख रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी सारी बातों को यदि एक वाक्य में कहना हो तो वो हम कह सकते हैं सबका हित है सुख प्राप्त करने में। घुमा फिरा करके सब घूम फिर करके बात कहाँ आएगी? फाइनली यदि आप पहुंचेंगे कहीं तो बात पहुंचेगी कि सुख प्राप्त करने में हमारा हित है, सुख में है हमारा भला। तो जो सुख का उपदेश हो वो हितोपदेश है। हित हित यदि सुख में है तो सुख का उपदेश हितोपदेश होगा। अब आपका बिजनेस बढ़ाने का उपदेश हितोपदेश नहीं हो सकता है भाई साहब, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। चलिए ये नक्की करो सुख कहाँ है। और यदि उसमें सुख नहीं है तो जितना भी उपदेश दिया गया वो हितोपदेश नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग से नेतारम कहकर के हितोपदेश ही बना लिया, याद हो गई बात। भेद तारम कर्म भूग्रताम कहकर के क्या लिया? वीतराजी, वीतरागता, वीतराजी है हमारे भगवान। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेद तारम कर्म भूग्रताम, नंबर तीन ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ज्ञातारम जानने वाले हैं विश्व तत्वानाम, विश्व तत्व को जानने वाले हैं सर्वज्ञ। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्व को जानने वाले होते हैं इसका मतलब सर्वज्ञ होते हैं। तो क्या क्या बातें हो गई? भगवान हितोपदेशी होते हैं, भगवान बीचराग होते हैं, भगवान सर्वज्ञ होते हैं। तो बताओ क्यों आए हो भगवान के पास में? आपको ये अच्छा लगता है? वीतरागता अच्छी लगती है आपको? वीतरागता पसंद है, हितोपदेशी पसंद है, सर्वज्ञता पसंद है? आपको सर्वज्ञ भी हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा? देखो भाई जी, नहीं यदि अच्छा लगता हो तो कल से मंगलाचरण मत बोलना। तुम्हें तो मंगलाचरण में आप कह रहे हो वंदे सद्गुण लब्धे, बोल तो रहे हो कि मुझे ये चाहिए और आप कह रहे हो पसंद नहीं है, तो कैसे चलेगा? आपको ये तीन बातें पसंद आ रही है या नहीं? यदि ये तीन बातें पसंद आती है तो फिर उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरा मस्तक आपके चरणों में इसलिए झुक रहा है कि मुझे ये तीन बातें पसंद है। वंदे सद्गुण लब्धे, मोक्ष मार्ग से नेकारम मतलब हितोपदेशी, भूलना मत, भूलना मत। और भेद कारम कर्म भूव्रताम मतलब मित्रागी, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम मतलब सर्वज्ञ। हितोपदेशी, वीतराग और सर्वज्ञ, हितोपदेशी पना आपको पसंद है या नहीं है? चलिए ये बतलाओ, क्यों पसंद है आपको हितोपदेशीपन? क्यों पसंद है? क्योंकि इस व्यक्ति का नेचर हमेशा से उपदेश देने का रहा है, उपदेश मानने का नहीं। उपदेश सुनता कम है क्या? उपदेश सुनता नहीं है, उपदेश मानता नहीं है, उपदेश देना अच्छा लगता है। हर व्यक्ति औरों को उपदेश देवे ऐसा लगता है। इसको लगता है कि मैं उपदेश दूं, इसको लगता है कि मैं उपदेश दूं, इसको लगता है कि मैं और उपदेश दूं, ऐसा लगता है सबको। आपको नहीं लगता है? अपने बच्चों को उपदेश नहीं देते आप? बेटे बहुओं को उपदेश नहीं देते? जहां चार लोगों के बीच में खड़े हो जाते हो कुछ भी उपदेश, उपदेश देने का मतलब कोई धर्मोपदेश ही नहीं है, कुछ ना कुछ समझाना। मैं कह रहा हूं ना ऐसा है, जहां थोड़ी सी नॉलेज होती है वहां कुछ ना कुछ उपदेश देने लग जाता है, ये बताने लग जाता है ऐसा है ऐसा है, ये उपदेश देता है। मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता, हितोपदेशी पना ये सबको पसंद है कि आपकी बातें सब सुने। आपको अच्छा लगेगा? मेरी सब माने मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति मेरी बात मानता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे पता है क्यों अच्छे लगते हो? आप लोग इसलिए अच्छे लगते हो कि आपने फटाफट कह दिया कि हाँ याद करेंगे, सब मानते हैं, कहना तो अच्छा लगता है। हाँ भाई, ये भी कहना मानता है। तो क्या कहा? हितोपदेशी हमारा उपदेश सब माने सुने, ये अच्छा लगता है। ठीक है, सेकंड नंबर बात करो, वीतरागता अच्छी लगती है क्या आपको? यार वीतरागता तो कम पसंद है हमें, थोड़ी सी वीतरागता तो कम पसंद है। वीतरागी हमें, वीतरागी में क्या मिलेगा हमारे को? कि सुनो, वीतरागी हो जाओगे तो वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। तो यदि आपको वीतरागता मिल जाएगी तो एक चीज आपको मुफ्त में मिल जाएगी। बोले वो क्या है? बोले सर्वज्ञता, एक के साथ में एक फ्री ऑफर चल रहा है अभी, एक के साथ में एक फ्री, वीतरागता के साथ में सर्वज्ञता मिलेगी। बोले ये सर्वज्ञता क्या होती है? सर्वज्ञ माने सब कुछ जानना। फिर आपको सुबह उठते ही पहले न्यूज़पेपर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप सर्वज्ञ हो जाएंगे तो। यदि आप सर्वज्ञ हो जाएंगे तो आपको वो न्यूज चैनल घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप सर्वज्ञ हो जाएंगे तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि कौन से शेयर के दाम घट रहे हैं और कौन से के बढ़ने वाले हैं। बोलो बनना है सर्वज्ञ? बात तो बहुत अच्छी है, मजा आ जाएगा हमारे को सारी बातें पहले से पता लग जाए तो। कि सुनो, मजा तो आ जाएगा लेकिन आपने वीत रास्ता को नहीं समझा अभी। सर्वज्ञ हो जाएंगे उससे पहले वीतरागी जरूरी है। वीतरागी होते हैं तो सर्वज्ञ होते हैं, बिना वीतरागता के सर्वज्ञता नहीं होती है। इसलिए पहले वीतरागता फिर सर्वज्ञता, ये लोकालोक उसको दिखाते हैं जिसको लोकालोक में कोई रस नहीं होता है, उसे दिखाते हैं। तो ये सर्वज्ञता है। ये तीन गुण उमा स्वामी आचार्य कहते हैं वंदे सदगुण लब्धये, ये आपके किताब में भी लिखा है, आपके पेज में भी लिखा है। आपके पास भी ये लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा है जरा पढ़ के बताना साहब, क्या लिखा है? पहले पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? आप पढ़ सकते हैं? हिंदी पढ़ना आता है आपको? हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा, जिसको हिंदी आता हो वो पढ़ सकता है। ये कौन सी लैंग्वेज में है? देवनागरी लिपि है ना, जो हिंदी जैसी है। इसमें कौन सा अक्षर ऐसा है जो हिंदी का नहीं है? सब हिंदी के अक्षर है। देखो अब मैं एक एक चरण बोलता हूँ, रिपीट करना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम्, देख करके पढ़ो वही। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृताम्, भेतारम् कर्म भूभृताम्, ज्ञातारम् विश्व तत्त्वानाम्, ज्ञातारम् विश्व तत्त्वानाम्, वंदे सद्गुण लब्धये, वंदे सद्गुण लब्धये। अब मेरी तरफ नहीं देखना, अब मैंने जो कहा है वो आपकी किताब में लिखा है या नहीं? लिखा, सब लिखा है। अब मैं अर्थ बताता हूँ, उसमें से देखना उसमें है या नहीं है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? मोक्ष मार्गस्य माने मोक्ष मार्ग के, नेतारम माने नेता, मोक्ष मार्गस्य नेतारम माने नेता हो मोक्ष मार्ग के, ठीक है। फिर कहा भेदतारम माने भेदने वाले, टुकड़े कर देने वाले, भेद दिया, किले को भेद दिया, पर्वत को भेद दिया, क्या भेद तारम कर्म भूभ्रताम, कर्म रूपी भूभ्रत माने पर्वत, जमीन पर खड़े रहने वाले बहुत विशाल पर्वत, कौन से पर्वत, कर्म रूपी पर्वत, कर्म भूभ्रताम कर्म रूपी पर्वतों को भेद तारम माने भेदने वाले हैं। पहली लाइन हो गई, मोक्ष मार्ग के नेता हैं कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं। नंबर तीन, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व ज्ञातारम माने जानने वाले हैं, विश्व तत्वानाम माने विश्व तत्व को आप जानने वाले हैं। वंदे वंदना करता हूँ, मतलब निभाता हूँ, तद गुण लब्धये आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, ठीक है। वंदे माने वंदना करता हूँ, तत् गुण, तत् गुण माने उन गुणों की लब्धये, लब्धये मतलब प्राप्ति के लिए, आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए आपको वंदना करता हूँ। देखो भाषा तो ये प्रयोग की है आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, लेकिन इसमें भाव ये छिपा हुआ है कि जहाँ आप बैठे हो वहाँ आपके बगल में आकर के बैठ जाऊं, बात ये छिपी है। दुनिया में कौन मानेगा इन बातों को, कौन कौन स्वीकार करेगा, आपको बर्दाश्त होगी। आप क्या बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, क्या है, डॉक्टर है, आप डॉक्टर, आपकी क्लिनिक है, अभी क्या है, ओके, तो आप क्या करते हैं, बिजनेस आपका किस चीज का,
ऑफिस फर्नीचर का,
ऑफिस फर्नीचर का बिजनेस है, कहाँ है, शॉप है,
ऑनलाइन वेबसाइट,
वेबसाइट पर है, तो मेरे को भी करना है, वो ही फर्नीचर का ही करना है, तो आप और ऑनलाइन ही करना है, तो आप मुझे कुछ टिप्स देंगे,
नहीं
आप मना कर रहे हैं,
सच तो बोल दिया
बात तो ठीक है, अरे फिर नहीं देंगे इनको लगता है, और फिर मैं यदि और उसमें थोड़ी बात और पूछने लगूं कि वो आप कहाँ से परचेज करते हैं, बोले यार पंडित जी ऐसा तो मत करो, और मैं फिर ये और पूछने लगूं कि किनको सप्लाई करते हैं, कोई नहीं बताता है अपने बिजनेस सीक्रेट, कोई नहीं बतलाना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि आप मेरे बगल में शोरूम खोल लें। लेकिन सुनो, हमारे परमात्मा ऐसे विचराजी है, ये तीन लोग के नाथ, ये कहते हैं मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि तुम यदि मेरे बगल में आकर के बैठ जाओ। बोलो ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे, ऐसा दर्शन कहाँ मिलेगा, ऐसा संप्रदाय आपको कहाँ मिलेगा, बोलो। बड़े भाग्य से ऐसे जैन कुल में जन्म लिया है हमने, बड़े भाग्य से हमारे को ऐसे महावीर भगवान मिले हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान मिले हैं, जो ये कहते हैं कि तू मेरा भक्त बन करके आता है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तू मेरे बगल में आकर के बैठे तो मुझे अच्छा लगेगा। बोलो ऐसे परमात्मा तुम्हें कहाँ मिलेंगे। वंदे सद्गुण लब्धये, ऐसे गुणों की प्राप्ति के लिए भगवान मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, मैं मस्तक आपके चरणों में झुकाता हूँ। अच्छा लगता है आपको, अच्छा लगे, अच्छा आपको कैसा लगता है, देखो आपको कोई व्यक्ति आकर के पैर छुए है तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है क्या, कोई व्यक्ति आपको हाथ जोड़ता हो, आपकी जय जयकार करता हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपके गले में माला डालता हो तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगेगा। कहीं हमारे 2-4 हजार लोगों के बीच में हमें बुलाकर स्टेज पर बुलाए और हमारी प्रशंसा करे, हमें कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सुनो, ये जो हितोपदेशी है ना, ये हमारी प्रशंसा करते हैं। ये हमारी प्रशंसा कहाँ करते हैं, किन के बीच में कर रहे हैं? अकेले में नहीं, सौ सौ इंद्रों की हाजिरी में करते हैं, समोह शरण में बैठकर करते हैं। 30 साल तक भगवान महावीर स्वामी मेरी प्रशंसा करते रहे, वो मेरे गीत गाते हैं। और इतना ही नहीं, वो अपने सारे सीक्रेट्स, कौन से सीक्रेट कि जिससे वो उस पद तक पहुंचे हैं, उस पोस्ट पर पहुंचे हैं, ये सारे सीक्रेट्स सभा में बैठ करके सब लोगों को बताते हैं कि आप सब लोगों को क्या कहते हैं, जाहिर निमंत्रण है, जाहिरात करते हैं, ऐसी ओपन निमंत्रण है, जो चाहो आप लोग मेरे बगल में आकर के बैठ सकते हो। अच्छा, अभी वो है ना आपके ट्रंप,
तो
ट्रंप पसंद है आपको?
हाँ,
क्या बात था, ट्रंप पसंद है? पसंद है हरी भाई आपको? पसंद है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कोई मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, ट्रंप को पसंद करोगे, किसी को भी पसंद करो, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे ना पसंद मत करना। और किससे क्या लेना दे, मैं तो ये कहता हूँ आप जिसको पसंद करते हैं वो ट्रंप ये कहे कि यार हरीश भाई साथ में डिनर करना है, तो आपको कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा। मेरे को वो कह रहे हैं साथ में डिनर करना है, इससे अच्छा और क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा। और वो कहे कि आप नीचे नहीं, बहुत बड़ी सभा लगी हो, हजारों लोग उसको सुनने के लिए आए हो, और वो आवाज लगा करके आपको बुलाए कि मैं जहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ मेरे बगल में हरीश भाई आकर के बैठेंगे, आपको लगता है मेरे तो बाल भी खुल गए, कितना अच्छा लगता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो वेदी पे महावीर भगवान बैठे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप से बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े बहुत बड़े हैं। तो आप ट्रंप के बगल में तो बैठना चाहते हो, इनके बगल में बैठना नहीं चाहते हो? मैंने आपको ये तो लगता है, यहाँ तो आपको लगता है अरे कोई यदि कोई हॉलीवुड स्टार हो ना, कोई सुपर स्टार, तो ये सोचता है उसके साथ में मेरी फोटो खिंच जाए, बस फोटो खिंचाना चाहता है उसके बगल में बैठ करके, तो लगता है उसमें मेरी शान बढ़ेगी। अरे ये तीन लोग के नाथ के बगल में बैठ करके शादी अनंत काल के लिए बैठने का चांस जिसे मिले, उसकी जो क्या कहेंगे पात्रता, उसकी एलिजिबिलिटी, वो ये तत्वार सूत्र पढ़ने से आती है। ये सत्संग करने से उसकी पात्रता आती है कि जिस जैसे पात्र आप बन करके वो भगवान बन सको, परमात्मा बन सको। ये परमात्मा बनने का मार्ग बतलाने वाले हैं यहाँ, मोक्ष मार्ग वंदे सदगुण लब्ध है, ये वंदना तो कर ही रहे हैं, और फिर आगे जो मार्ग इन्होंने बतलाया है उस मार्ग को बतलाते हुए कह दिया है ये वो विधि है, ये वो मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके हम आपके समान बन सकते हैं। बोले वो मार्ग क्या है, ये लिखा है बोर्ड पर, हमने दर्शन श्रद्धा, फिर नीचे लिखा ज्ञान, और फिर लिखा चारित्र। ये किसका लिखा हुआ है? नीलेश भाई का। अच्छा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, मोक्ष का मार्ग है। उमा स्वामी आचार्य पहले सूत्र में कहते हैं आपको यदि पसंद हो उनके बगल में बैठना, आपको यदि पसंद हो परमानेंट सुख प्राप्त करना, आप यदि ये चाहते हो कि मुझे टेम्परेरी सुख नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट सुख चाहिए, आप चाहते हैं क्या ऐसा? आप यदि ये चाहते हो कि हमेशा के लिए घुटनों के दर्द की झंझट से मुक्ति मिल जाए, चाहते हैं आप? आप ये चाहते हैं क्या कि लाइफ टाइम के लिए आपको कान की मशीन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए? आप ये चाहते हैं क्या कि लाइफ टाइम के लिए आपका चश्मा उतर जाए और कभी नहीं चढ़े? आप यदि ये चाहते हैं कि लाइफ टाइम के लिए हमारे को भोजन की झंझटों में नहीं उलझना पड़े, चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ उपाय बतलाओ कि लाइफ में कभी भी हेडक नहीं होगा, चाहते हैं? कुछ बोल ही नहीं रहे यार, प्रोग्राम कैंसिल करता मैं।
मिलेगा नहीं,
मिलेगा नहीं तो आपको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर।
आप डॉक्टर
हैं? अरे हम डॉक्टर हैं और क्या, आप डॉक्टर हैं, आपने तो छोड़ दिया, हम अभी भी डॉक्टर हैं। आपने कितनों का इलाज किया होगा, और जिसका इलाज किया होगा वो दोबारा मरीज हो गया होगा। हम ऐसा इलाज करेंगे जिसके बाद में मरीज रहेगा ही नहीं।
क्या
आपने जिसका इलाज किया अब वो बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा दोबारा? हो सकता है। फिर क्या इलाज किया आपने? आपने इलाज किया फिर भी बीमार पड़ सकता है। यहाँ वो उपाय बतलाते हैं क्या, एक बार बीमारी यदि दूर होगी तो फिर अनंत काल में बीमारी नहीं लगेगी। ये उपाय बतलाएंगे उमा स्वामी आचार्य, ये उपाय बतलाते हैं। परमानेंट ट्रीटमेंट होगा, एक बार इलाज कराओ फिर अनंत काल में दोबारा इलाज कराने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है आप तो ऐसा इलाज करते थे कि ये मरीज बार बार मेरे पास आए। करते थे देखो, सच्ची बात है, सबके सामने बता रहा हूँ आपका सीक्रेट। आपने मना नहीं किया था ना इसलिए। सब चाहते हैं ऐसा, ये जो ग्राहक मेरे पास में आया है ना, ये ग्राहक बार बार मेरे पास में आए, ये क्लाइंट मेरे पास में आया है, ये क्लाइंट मेरे ही पास में आता रहे हमेशा। ऐसे रिसर्च हुई है अभी बहुत, जिनमें मालूम चला है कि जानबूझ करके वो पूरा इलाज नहीं करते क्या, इसलिए नहीं करते कि फिर ये आएगा क्यों, ये बार बार आना चाहिए हमारे पास में। सुनो भाई, यहाँ इस धोखे में रखने का काम नहीं है। हमारे यहाँ भगवान धोखे में नहीं रखते। हमारे यहाँ भगवान तो ये कहते हैं हम ऐसा इलाज करेंगे कि आपको न जन्म होगा न बुढ़ापा, और बुढ़ापे से भी परेशान है सब। बुढ़ापा चाहिए कि नहीं चाहिए? बुढ़ापा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं चाहिए फिर भी मिलेगा। ऐसा ही है संसार का स्वरूप। जन्म से छुटकारा मिल जाएगा, बुढ़ापे से छुटकारा मिल जाएगा, मरण से छुटकारा मिल जाएगा, सदा सदा के लिए जन्म जरा मरण से छुटकारा मिलेगा, अज्ञान से छुटकारा मिलेगा, नित्यात्म से छुटकारा मिलेगा, जन्म जन्मांतरों के दुख से छुटकारा मिल जाएगा, न खाने की झंझट, न पीने की झंझट, और न टीवी के चैनल बदलने की झंझट, क्योंकि ऐसा टीवी दिखेगा कि सारा लोकालोक एक साथ झलकेगा उसमें। बोलो, चैनल बदलने की झंझट नहीं है, कोई चैनल नया लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक साथ झलकेगा, एक साथ दिखेगा। ये भाई साहब, ये ऐसा चैनल चलने वाला है यहाँ पर, यहाँ भी टीवी दिखाएंगे आपको। आपको टीवी बहुत पसंद है मुझे कह रहे थे महेंद्र भाई, टीवी नहीं छूटता है, टीवी नहीं छूटता है आपका। यहाँ टीवी दिखाएंगे, यहाँ प्रोग्राम दिखाएंगे, यहाँ शो चलेगा। लेकिन ये जो शो चल रहा है, इस शो में एक बात है, आप जो शो देखते हो उसमें आप सामने बैठ करके देखते हो, यहाँ जो शो चलेगा उसमें पार्टिसिपेंट आपको करना पड़ेगा। क्या ये बात यहाँ सिखा रहे हैं, यदि आपको लगता हो कि हमें मोक्ष चाहिए, यदि आपको लगता हो कि हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है, तो फिर आपको मोक्ष का मार्ग बतलाएंगे। नहीं चलना हो तो मुझे वैसे बता देना। जिनको मोक्ष मार्ग पर चलना हो, उस मंजिल पर पहुंचना हो, जिनका फाइनल डेस्टिनेशन ये महावीर भगवान जैसा हो, उनके लिए ये बात है। और जिनको नहीं जाना हो, अभी एक घंटे का टाइम है बीच में, विचार कर लो, अच्छे से सोच लो, क्या आप अच्छे से सोच लेना, यदि आपको चाहिए कि हमें उस जगह पहुंचना है, तो फिर उमा स्वामी आचार्य मार्ग बतलाएंगे। और उस मार्ग की चर्चा शॉर्ट में नहीं करूंगा, डिटेल में भी नहीं करूंगा, फास्ट करूंगा, लेकिन समझ में आए वैसे ही करूंगा, है ना। ज्यादा फास्ट भी नहीं चलूंगा और इतना स्लो भी नहीं चलूंगा कि यहीं अटक करके रह जाऊं, आगे भी बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन जितना समझ में आए उतनी चर्चा करेंगे। मोक्ष का मार्ग क्या है, उसकी विधि क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको बहुत सुंदर शब्दों में यहाँ इन्होंने समझाया है। इसकी चर्चा हम करेंगे भोजन के बाद।